हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 15, 16, 17 और 18। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशये नराधसाम् स्वधामनि ब्रह्मणिरस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्पणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूण नृपुलिन्द पुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाघसादया येनीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वीतन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समीरिषीणं ऋषभ प्रसीदतां भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभो निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनिशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं साम्या यन्मुखम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंध अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में नारद जी को बता रहे हैं और आज हम श्लोक नंबर 15 में भगवान के अत्यंत ही कृपामय अवतार जो कि गजेंद्र की पुकार सुनकर अवतरित हुए थे उनके विषय में श्रवण करेंगे। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अंतः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राणेन यूथपतिरम्बुजः स्तार्त आहेदमादिपुरुष किल लोकनाथ तीर्थ शव श्रवण मंगल नाम देया अंत सरस्यु बलने पदे पदे गृहीतो ग्राहेण यूत पतिरंबुज स आर्त आहेदमादिपुरुष किल लोकनाथ तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम देया अंत सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूत पतिरम्बुजहस्नात आहेदमादिपुरुष किल लोकनाथ तीर्थ श्रव श्रवण मंगल मदेह। शब्दार्थ अंत सरस्यु बलिन पदे गृहीतो। अंत सरस यानी नदी के भीतर उरुबलेन पद उरुबलेन मतलब श्रेष्ठ शक्ति से पदे गृहीतो मतलब जब उनका पद गृहीत किया गया यानी पकड़ा गया। ग्राहेण यूथपति ग्राहेण मतलब मगर द्वारा और यूथपति मतलब हाथियों के नायक का और तब ग्राहेण यूथपति अम्बु जहस्य आर्त अम्बु जहस्त मतलब हाथ में कमल का पुष्प लेकर अम्बु कहते हैं कमल पुष्प को और हस्त कहते हैं हाथ हाथ हाथी का हाथ नहीं होता है वो जो सूंड होती है ना उसको हाथी का हस्त कहा जाता है। आर्त अत्यधिक पीड़ा में जब हाथी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो भगवान बताते भगवत गीता में कि बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो दुखी होने के बाद मुझको मेरे पास आते हैं है ना। जब वो दुखी होते हैं तब भगवान के पास आते हैं और उन आर्त में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है गजेंद्र का। गजेंद्र जो है वो दुखी हालत में भगवान को कैसे स्मरण कर रहे हैं भगवान के नाम को जोर से लेते हैं और भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान को अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प प्रदान करते हैं और यहाँ पर कहते हैं अम्बुहास आर्त आह इदम यानी संबोधित किया इदम किस प्रकार से आदि पुरुष आह इदम आदि पुरुषाखिल लोकनाथ आप आदि पुरुष हो और अखिल लोकनाथ अर्थात संपूर्ण जगत के आप नाथ हो और तीर्थ शव श्रवण मंगल नाम दे तीर्थ शवल यानी तीर्थ स्थल की भांति विख्यात श्रवण मंगल जिसके नाम के सुनने मात्र से ही समस्त जीवों का कल्याण हो जाता है। श्रवण मंगल जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं
उसी से जीव का कल्याण होता है। क्या श्रवण करना? नाम देह, भगवान का पवित्र नाम और भगवान के पवित्र जो लीलाएं हैं, नाम देह जिनका पवित्र नाम जप करने के योग्य है, उनके विषय में श्रवण करने से ही जीव का कल्याण होता है। अनुवाद देखिए, अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने के से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम को जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि नदी के भीतर बलशाली मगर यानी ग्राह द्वारा हाथियों के नायक यानी गजेंद्र का पैर पकड़ लिया जाने की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। यहाँ पर जैसे हमने पहले कहा, सब संक्षिप्त में है, आगे ये सारी कथाएं विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है, मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी हमेशा मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगर हाथी से अधिक बलशाली बन जाता है। चूंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का महान भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ हुआ। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव आत्मा सदैव कष्ट में रहती है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, वह अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है। जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 7.16 में हुई है, किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहें, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.15 में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबारा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर यहाँ पर भगवान की जो करुणा है जीव के ऊपर, उसके विषय में बता रहे हैं कि यद्यपि हाथी के पास मनुष्य शरीर नहीं था, उसके पास कोई योग्यता नहीं थी, वो तो पशु था, लेकिन जब कोई भी शरीर में जीव भगवान को याद करता है तो भगवान तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन जीव को भगवान को याद करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो है कि उसे पता हो कि मेरी रक्षा केवल भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। उसे ये पहले से ज्ञान हो, भले आज हम अगर मनुष्य बने हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे जाकर हमको मनुष्य स्वरूप मिलेगा, लेकिन जब जीव को मनुष्य देह मिलता है तो उस देह में जीव को इतनी पर्याप्त मात्रा में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या भागवतम का श्रवण कर रहे हैं तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतने अनर्थ बढ़े हुए हैं, इतनी वासनाएं भरी हुई हैं, इतना काम क्रोध और लोभ मद मात्सर्य से हमारा हृदय विदीर्ण है, तो ना जाने कितने जन्मों के बाद मुक्ति हो। लेकिन आज यदि मनुष्य जीवन में हम भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, तो वो हर योनि में हमारा साथ देगा। गजेंद्र ने उस हाथी के जन्म में कोई तपस्या नहीं की थी, पहले जन्म में जब वो राजा इंद्रदुम्न थे तब उन्होंने भगवान की स्तुति याद की थी, और आज जब उसके ऊपर कष्ट आया तो वो भगवान की याद की हुई स्तुति उन्हें याद आई। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति करने के सारे साधनों को अपने जीवन में इकट्ठा करके
जमा करके रखना है। फिर चाहे हम किधर भी जाएंगे, किसी भी योनि में जाएंगे, तो ये सारे साधन जो है वो भगवत धाम ले जाने के लिए हमारी सहायता करेंगे। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान भगवत गीता 7.16 में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नो अर्जुन, जिनके पास सुकृति होती है ना वही मेरे पास आते हैं। कब आते हैं? जब वो दुखी होते हैं तब आते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है तब आते हैं, जब उन्हें जिज्ञासा होती है तब आते हैं, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं ही उनका उद्धार कर सकता हूँ तब आते हैं। लेकिन जिनके पास सुकृति नहीं होती है, जिनने कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी ना कथा सुनी है, न सत्संग अटेंड किया है, ना नाम जप किया है, कभी मेरे साथ संबंध जोड़ा ही नहीं है, तो वो तो दुष्ट है। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वो नूर है, नरों में अदम है, यानी मनुष्य जीवन प्राप्त किया लेकिन जिया तो केवल जानवरों की तरह जिया, इसलिए वो कभी मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुण पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उभारा। इसी तरह यदि हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, तो चाहे हम किसी भी योनि में चले जाए, किसी भी लोक में चले जाए, हम सब भी उन्हें हृदय से बुलाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस स्तुति को, इस महामंत्र को इतना रट लेना है कि चाहे हम किसी भी योनि में चले जाए ना, जब भी कोई कष्ट हो, जब भी कोई विपत्ति हो, जब भी कोई संकट हो, तो मुख से केवल यही महामंत्र निकले। और इस मंत्र के ऊपर इतनी पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि जब मेरे मुख से ही मंत्र निकलेगा तो भगवान अवश्य रिस्पांस देंगे, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। इस मंत्र के अंदर अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा डाल देनी है, क्योंकि कलयुग में केवल यही महामंत्र हमारा उद्धार कर सकता है। आगे श्री रूपा जी कहते हैं, हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था, उसने भगवान को आदि पुरुष अर्थात आदि भोक्ता कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीव आत्माएं दोनों चेतन हैं, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं के सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता है। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता होता है। शुद्ध भक्त यह बलि भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति हैं और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा ना रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशुद्ध व्याख्या ईशोपनिषद में की गई है, जो भगवान तथा अपने में होने वाले इस अंतर को समझता है, वह भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। प्रभुपाद जी यहाँ पर आदि भोक्ता के विषय में बता रहे हैं कि भगवान क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए पूरी वस्तुएं जो भी हैं उनका अधिकार, उनको भोगने का अधिकार केवल भगवान का है। भले ही हम भगवान के संतान हैं, लेकिन आदि भोक्ता भगवान हैं और उनका उच्चिष्ट जो प्रसाद है वो ग्रहण करके ही जीव आत्मा संतुष्ट हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं ना इसे कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया और सारी वस्तुएं हमारे ग्रहण करने के लिए ही बनाई हैं, इसलिए हम जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस वस्तु को भगवान ग्रहण नहीं करते, जिस वस्तु को भगवान स्वीकार नहीं करते, या जिस वस्तु को भगवान रिकमेंड नहीं कर सकते, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। यदि हमको भगवान ने बुद्धि दी है तो हमें इस बुद्धि का उपयोग इस बात के लिए करना चाहिए कि भोक्ता भगवान है और हम प्रवृत्ति भोक्ता है। प्रवृत्ति भोक्ता मतलब कि जो भगवान भोगेंगे उसके द्वारा, जो भगवान स्वीकार करेंगे उसी वस्तु को स्वीकार करके ही हम आनंदित हो सकते हैं। और यदि भगवान को अर्पण किए बगैर हम कोई वस्तु को स्वीकार करते हैं तो हम पाप का भोग कर रहे हैं और पाप का परिणाम दंड होता है, कष्ट होता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान तथा अपने होने वाले, अपने में होने वाले इस अंतर को समझता है वो भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्राह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था, और चूंकि यह भगवान का व्रत है कि उनके भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, अतः यह उचित ही था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए। यूं तो भगवान सबके रक्षक हैं, किंतु जो व्यक्ति इतना अहंकारी है कि वह भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता या उनके समान होने का दावा करता है, उसकी उपेक्षा भगवान उसकी रक्षा प्रथम करते हैं जो उनकी श्रेष्ठता का स्वीकार करते हैं। वे सदैव श्रेष्ठ हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के बीच में इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वीर्यता प्राप्त होती है, किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने आप को भगवान घोषित करता है वह असुर कहलाता है, अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है और वह भी उतना ही जितना कि भगवान अनुमति देते हैं। चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर हमें समझा रहे हैं कि भगवान भले ही संपूर्ण जीवों को रक्षा करने वाले हैं, संपूर्ण जीवों को जीने के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो तो भगवान प्रोवाइड करेंगे, चाहे उसकी भक्ति करें या ना करें, है ना। ये नहीं कहेंगे भगवान भाई तुम तो मेरा नाम नहीं जप करते हो, फिर आज से तुम्हारे लिए वाटर सप्लाई बंद, तुम तो क्योंकि मुझे कभी प्रणाम नहीं करते हो आज से ऑक्सीजन तुम्हारे लिए बंद, सूर्य प्रकाश तुम्हारे लिए निषेध हो जाएगा क्योंकि तुम मेरी भक्ति नहीं करते हो, मेरी आरती नहीं करते हो, मेरी मुझे भोग नहीं लगाते। नहीं भगवान, ये सारी फैसिलिटीज तो मनुष्यों को छोड़ के राक्षसों को भी देते हैं, है ना। भगवान तो कीड़े मकोड़े चींटी और कॉकरोच की भी रक्षा करते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि वास्तविक सुरक्षा ये है कि जिसको प्राप्त करके जीव पुनः इस दुख भरी दुनिया में कभी आए नहीं, और वो वास्तविक सुरक्षा क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति। वो तभी जीव को प्राप्त हो सकती है जब जीव भगवान के साथ संबंध निर्धारित करके अपने आप को भगवान की शरणागत स्वीकार करेगा। हाथी भगवान को अखिल लोकनाथ कहते हैं कि मैं आप तो क्योंकि संपूर्ण जीवों के, संपूर्ण प्राणियों के, संपूर्ण लोगों के नाथ हो, तो मैं भी तो उसी संपूर्ण जो लोक है उन्हीं का एक छोटा सा अंश हूँ, तो आप मेरे भी स्वामी हो ना, मैं आज आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे केवल इस हाथी की जंगल से मत छुड़ाइए, मुझे जन्मांतर के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा दीजिए। जब हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलती है ना, तो भगवान अवश्य हमें अपने धाम में स्वीकार कर लेते हैं। जब हृदय में भौतिक वस्तुओं की आसक्ति समाप्त होती है, जब हृदय में ऐसा होता है कि अब इस संसार में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मुझे केवल भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, तो भगवान अवश्य अपने धाम में हमें स्वीकार करते हैं। और वो धाम कैसा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद इस दुखों भरी दुनिया में वापस नहीं आना पड़ता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हाथी ने भगवान को तीर्थ श्रवह कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के
फलों की निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का स्मरण करता है तो वह समस्त पापों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से परिपूर्ण है। अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर तीर्थ, जैसे तीर्थ शवा के कर हाथी ने भगवान को पुकारा है, तीर्थ किस लिए है? तीर्थ इसलिए है कि जी वहाँ पर जाकर अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सके। लेकिन भगवान का केवल नाम ग्रहण करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे वो तीर्थ स्थान में जाए या घर में या कहीं पर भी बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो घर बैठे आपको तीर्थों में स्नान करने का फल प्रदान कर देती है। चाहे जहाँ पर भी हो, यदि हमारे मुख से निकलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये नाम हमको पूरी तरह से शुद्ध कर देता है, अर्थात तीर्थों में जाने का लाभ प्रदान कर सकता है। और श्रवण, तीर्थ श्रवण, श्रवण मतलब श्रवण करते। जब हम भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं तो वहाँ पर सारे तीर्थ, तत्र सर्वाणि तीर्थाणि प्रयागाणि सदैव ही, वहाँ पर सारे तीर्थ जितने भी हैं वो सब आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए वो जगह कोई साधारण जगह नहीं होती है, जहाँ पर आप भागवत श्रवण कर रहे हो, जहाँ पर आप भगवान की कथाओं को श्रवण करते हो। इसलिए अधिक से अधिक, भले हम तीर्थों में ना जा सके, लेकिन सत्संग में जहाँ पर भगवान की कथा हो रही होती है, भागवत चर्चा हो रही होती है, भक्तों का संग होता है, वहाँ जाकर हम तीर्थ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। श्रीमद भागवत में अन्यत्र पवित्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही खुद में पुण्य कर्म है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों को के सुनने के लिए कुछ कार्यकलाप का सृजन हो। अन्यथा भगवान का इस जगत में कोई सरोकार नहीं है और ना ही वे कुछ करने के लिए बाध्य है। वे अपनी अहितु की कृपा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरण से भरे हुए हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने से तथा पढ़ने के इच्छुक हो। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नव युवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तथा तमोगुणों की वृद्धि होती है, जिससे भवबंधन प्रगाढ़ हो जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है, इससे चतुर्दुख लाभ होता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पवित्र भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर
नाम देह कहा गया है, जिसका अर्थ है वे जिनका नाम जब कीर्तन करने योग्य है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि इस संसार में सुनने और बोलने के लिए तो जीव के पास बहुत कुछ है, परंतु जीव का कुछ भी जो इस संसार से रिलेटेड है उसके विषय में व्याख्या करना, उसके विषय में गुणगान करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। भगवान इस संसार में इसलिए नहीं आते हैं कि भगवान को दुष्टों को मारने के लिए संसार में आना पड़े। भगवान इस संसार में भक्तों की रक्षा करने के लिए भी नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान केवल अपनी दृष्टि मात्र से उन समस्त असुरों का सर्वनाश करने में सक्षम है जो उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाते। भगवान तो इस संसार में इसलिए आते हैं कि जब वो आएंगे तो वो सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करेंगे और उन लीलाओं को श्रवण करके संपूर्ण जीवों का कल्याण होगा। इसे जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी उपनिषद हैं, वो भगवान के विभिन्न कार्यकलापों से परिपूर्ण है ताकि हम जैसे अपवित्र, हम जैसे पतित जीव जो है वो भगवान के कार्यकलापों को श्रवण करके ही भगवत धाम को प्राप्त कर सके। इसीलिए बताएं यहाँ पर कि तीर्थ शवह श्रवण मंगल नाम देह, कि जीव का मंगल केवल तभी होगा जब भगवान के नाम और कथाओं रूपी तीर्थों में जीव स्नान करेगा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, हरि स्मरणार्थी नम प्रमेय चक्रायुध पतक राज चक्रेण नक्रवदन विनिपाट्य तस्मात् दस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोच्च हार। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनम प्रमेय चक्रायुध पतक राज भुजाधिरूढ चक्रेण नक्रवदनम विनिपाट्य तस्मा दस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोच्च हार। श्रुत्वा हरिस्तमरार्थिनम प्रमेय चक्रायुध पतगराज भुजाधिरूढ चक्रेण नक्रवदनम विनिपाट्य तस्मात् दस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोच्च हार। शब्दार्थ श्रुत्वा हरिस्तमर आर्थिनम अप्रमेय। श्रुत्वा जब भगवान ने सुना, कौन भगवान? केवल हरि, जो समस्त संकटों को, जब जीव के ऊपर संकट आए ना तो केवल हरि ही उनके संकट को हर सकता है। इसलिए अरण आर्थिनम यानी सहायता चाहने वाले, और भगवान कैसे हैं? अप्रमेय। अप्रमेय मतलब अनंत शक्तिशाली भगवान हैं। और चक्रायुध पतगराज भुजाधिरूढ चक्र आयुध, चक्र मतलब शंख चक्र गदा जितने आयुध हैं अपने अस्त्रों सहित, पतगराज मतलब पक्षियों के राजा गरुड़ के, भुज अधिरूढ़ यानी उनके भुज अधिरूढ़ यानी पंखों पर आसीन, चक्रेण नक्रवदनम विनिपाट्य तस्मा चक्रेण चक्र से, नक्रवदनम मतलब मगरमच्छ के मुख को, विनिपाट्य दो खंड करके उनके दोनों जो मुख है उसको काट दिया, तस्मात मगर के मुख से, हस्ते यानी हाथ में प्रग्रहिया सूंड पकड़कर, हस्ते प्रग्रह्य भगवान कृपयोच्चहारे, भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर कृपया यानी अहितु की कृपा से उच्चहार उद्धार किया। अनुवाद, हाथी की पुकार सुनकर भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब भगवान पक्षी राज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र सहित सज्जित होकर वहां पर तुरंत ही प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे उबार निकाला। वास्तव में भक्तों, ये केवल हाथी और मगरमच्छ का वार्ता नहीं है, ये तो हम सब जीवों की अपनी अपनी जीवन की घटना है, क्योंकि हम सब भी काल रूपी मगरमच्छ के द्वारा ग्रस्त किए हुए हैं। और जब तक हम हृदय से उस हरि को नहीं बुलाएंगे, तब तक ये काल जो है वो धीरे 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 हमारे पूरे अस्तित्व को निगलता जा रहा है, और न जाने कितने करोड़ जन्म तक और हमें भटकना पड़ेगा। इसी बुद्धिमानता यही है कि हम भी भगवान हरि को प्रेम से पुकारें, ताकि भगवान ने जिस तरह हाथी की सूंड पकड़कर उसे अपने धाम में लेकर उसका उद्धार किया, उसी तरह से हमारे हाथ को पकड़कर इस भव सागर से, इस काल रूपी मगरमच्छ के मुख से छुड़ा कर हमारा उद्धार कर दें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री भगवान अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई यह अनुमान नहीं कर सकता कि यह लोक कितनी दूर स्थित है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मानवयान से उस लोक तक पहुंचना चाहे, तो लाखों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया है, किंतु वो भौतिक, जबकि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मनोयान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक ना तो वायुयान की ना मनोयान की ही पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी, और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए। मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है, यह सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सकता है। इसलिए भगवान को यहाँ पर अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूर से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं, और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी ही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर हम भी सोचते हैं कि भाई यह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है या बहुत बलवानशाली व्यक्ति है, जब मुझ पर संकट पहुंचेगा तो इन सारे बलवानों के साथ मित्रता करूं, है ना, जिनके पास सत्ता है उनके साथ जब हम मित्रता करते हैं तो अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं। लेकिन जब हमें संकट पहुंचता है तब हमारी आवाज वो नहीं सुन सकते हैं, है ना। कभी ऐसा हो कि हम संकट में हो, हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं हो, तो हम अपने प्यारों को कैसे बुलाएंगे, है ना। उन तक तो हमारी आवाज नहीं, वो घर में बैठे होंगे, उसी कंट्री उसी सिटी में होंगे, लेकिन फिर भी उन तक हमारे, इवन हम एक कमरे में हो, उस कमरे में यदि हम पर आपातकालीन कोई अवस्था आती है, दूसरे कमरे में यदि हमारा कोई संबंधी बैठा हो, तो वहां तक भी हमारी आवाज नहीं जा सकती है, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं। लेकिन भगवान जो है वो तो हमारे हृदय में रहते हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्नि, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तो जब भी पुकारोगे ना तब वो तुरंत दौड़े चले आएंगे, भले ही उनका धाम जो है वो इतना दूर है। भगवान श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ना तो उस एरोप्लेन में बैठकर उसके पास जा सकते हैं, उसके धाम में, ना ही किसी मनोयान में बैठकर जा सकते हैं, लेकिन हमारी पुकार यदि प्रेम से हृदय से निकलती है तो डेफिनेटली भगवान उसी क्षण रिस्पॉन्स देते हैं, उसी क्षण हमारी सहायता करते हैं, उसी क्षण भगवान अपने धाम में बैठे हुए हैं, हमारे प्रेम को ग्रहण करते हैं, हमारे दिए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, हमारे साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है वो भगवान करते हैं। भगवान की शक्ति असंख्य है, अप्रमेय है। इसलिए किसी और पर भरोसा करना बेवकूफी है। हमें भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मुझे अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य प्रोटेक्शन करेंगे, कृष्ण मुझे कभी भी संकटकालीन अवस्था में अकेला नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण कभी मेरा बुरा नहीं होने देंगे। यदि हमें कृष्ण पर विश्वास होगा तो संसार भले हमारे विरुद्ध हो जाए लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं दो हाथ नवारो वाको क्या कर ली है बिगाड़, नारायण रखवा है जाकी बुझा हजार। यदि हजार बुझाओं वाले कृष्ण हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर होंगे तो दो हाथों वाले छोटे छोटे राक्षस वाला हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता असीम शक्ति है कि वो कहीं पर भी भक्त यदि उसे प्रेम से पुकारता है तो प्रकट हो जाते हैं।